जब हमारी क्षुधा निवारण हो जाए, भूख मिट जाए, तो किसी अन्य व्यक्ति को कोई प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भाई साहब आपका पेट भर गया। यह हम स्वयं अनुभव करते हैं। इसी प्रकार इस कथा के माध्यम से, इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ के पठन और अध्ययन से जो आत्मिक संतोष और शांति की आप अनुभूति करेंगे, ये वास्तविक है, ये सत्य है, ये त्रिगुणातीत है, ये चित घन आनंद घन ज्ञान घन भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में भक्ति करने का साक्षात परिणाम है। और कलकत्ता के निवासियों का ये परम सौभाग्य है कि यही शहर, यही स्थान श्रील प्रभुपाद की पवित्र जन्मभूमि थी, अर्थात पूरे विश्व भर के उद्धार करने की संरचना कलकत्ता से ही आरंभ हुई। और श्रील प्रभुपाद विश्व के कोने कोने में भ्रमण करने के पश्चात, अनेक अनेक राष्ट्रों में भ्रमण करने के पश्चात, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण नामामृत संघ के अनेक अनेक सेंटर और मंदिर स्थापित किए। और उन्होंने उल्लेख किया कि ये हरे कृष्ण आंदोलन के जितने भी मंदिर हैं, कृष्ण के मंदिर हैं, ये भगवत धाम से अभिन्न हैं, क्योंकि इन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध गुणानुवाद का कथन निरंतर चलता रहता है, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की पूजा यहां चलती है। इसलिए वास्तव में भौतिक जगत में रहते हुए भी ये मंदिर भौतिक जगत से कटकर हैं, भौतिक जगत से भिन्न हैं। और इसलिए जो यहां मंदिर न आ सके, तो उनको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की ओर आकर्षित करने हेतु अन्य ऐसे स्थानों पर कथा के आयोजन किए जा सकते हैं, जहां लोग एकत्र हों और हरि कथा में रुचि प्रदर्शित करें। और आज आप सभी के बीच श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित श्रीमद् भागवत के टीका के आधार पर यहां पर कथा का आयोजन हुआ है। यह वास्तविक श्रीमद् भागवतम है, जिसका तात्पर्य स्वयं नारद मुनि व्यासदेव को देते हैं। और इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की महान गौरव गरिमा को रखते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने ये भागवतम प्रस्तुत की और प्रत्येक भारतवासी से ये अपेक्षा की कि हम इस श्रीमद् भागवत के ज्ञान को गंभीरता पूर्वक स्वीकार करेंगे और संपूर्ण विश्व के समक्ष इस श्रीमद् भागवत के आधार पर जीवन जीकर एक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। और इसी आशा से हम ये कथा का आयोजन कर रहे हैं कि इस कथा में सम्मिलित हुए प्रत्येक भक्त इस कथा के सार तत्व को समझे, इस कथा के गुह्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे और इस कथा को केवल मनोरंजन मात्र न माने। यह कथा आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है, श्रीमद् भागवत आपके जीवन को पूर्ण रूप में सुधार सकती है, आपके हृदय की झोली को आनंद और उल्लास से भर सकती है। श्रीमद् भागवत को ऐसा एक अवसर आप दीजिए। इसलिए वर्णन आ रहा है, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान त्रिविष्णु वर्णन करते हैं, मैं वहां स्थित नहीं होता, कहा नाहं वसामि वैकुंठे, वैकुंठ में मेरा वास नहीं, योगिनां हृदयेषु वा। तो कोई विचार करेगा तो भगवान का निवास क्या योगियों के हृदय में है? तो भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं, नहीं, योगियों के हृदय में भी मैं निवास नहीं करता। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्तगण एकत्र होकर मेरे सुंदर कथाओं का गुणानुवाद करते हैं, उस पवित्र स्थान में मैं निवास करने की इच्छा करता हूं। अभी ठीक है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कथा का रसपान हमें इस मानव जीवन में करना है। और पिछले दो दिवस चित्रकेतु महाराज और ध्रुव महाराज की कथा का हम वर्णन कर चुके हैं। क्लेश क्या है, क्लेश का कारण क्या है, और क्लेश के कारण को ढूंढते हुए हम ध्रुव महाराज की कथा में पहुंचे थे। क्लेश का कारण यह है कि प्रत्येक जीव भगवान का एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है, लेकिन मोहवश अज्ञानवश वह स्वयं को इस जड़ जगत का एक अंग मान बैठता है और इस भ्रांत धारणा को पालते हुए वह प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन एक कठपुतली की तरह नाच रहा है। ध्रुव महाराज अपने पिता के गोद पर बैठना चाहते थे। ध्रुव महाराज को अपने पिता के गोद में सुरक्षा का एक स्रोत दिखाई पड़ा। ध्रुव महाराज की सौतेली मां ने कठोर शब्दों में ध्रुव की निंदा की और ध्रुव के हृदय को भयंकर आघात पहुंचा। यह इतना महान आघात था कि वह इसका प्रतिकार करने की इच्छा करते हुए वन में प्रवेश कर गए। उनकी अपनी मां सुनीति ने ध्रुव को उचित संदेश दिया। बेटा ध्रुव, यदि आप अपने इस हृदय को संतुष्ट और शांत करना चाहते हो, यदि आप अपने अशांत मन में शांति लाना चाहते हो, तो मैं केवल एक उपाय तुम्हें बतला सकती हूं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लो ध्रुव। केवल कृष्ण ही आपकी मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। कृष्ण का हृदय प्रेम से, आनंद से, दया से, करुणा से, भक्तों के प्रति अनुकंपा से निरंतर आप्लावित रहता है। कृष्णा की शरण जा बेटा, और कोई तेरी मदद नहीं कर सकता। यह है प्रामाणिक मां के लक्षण। जो अपने पर आश्रित अबोध बालकों को भगवान का आश्रय लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मां के आदेशानुसार ध्रुव महाराज वन में प्रवेश करते हैं। वन में प्रवेश करने के पश्चात उनकी भेंट महान ऋषि नारद मुनि से होती है। नारद मुनि ध्रुव के समक्ष आकर ध्रुव को हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। नारद मुनि अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं कि ध्रुव, अभी ये उचित आयु नहीं है, घर जा बेटा। अरे तुझसे पूर्व इस वन में अनेक अनेक ऐसे तथा कथित योगीगण आए हैं, हताश होकर चले गए, निराश होकर चले गए। अरे तुम्हारी सफलता प्राप्त करने की क्या संभावना है बेटा, छोटा सा बालक है, बुद्धि अपरिपक्व है, इंद्रियां पूर्ण रूपेण फलित नहीं हुई, अज्ञान में स्थित हो, मन चंचल है, हृदय में क्रोध है, अरे कहां से सफलता प्राप्त होगी? जा बेटा। लेकिन ध्रुव महाराज आसानी से हतोत्साहित नहीं होने वाले थे, निराश होने वाले में से नहीं थे। ध्रुव महाराज ने कहा, हो न हो सफलता प्राप्त करके रहूंगा, इस बात को स्वीकार करता हूं कि मेरा हृदय क्रोध से युक्त है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे हृदय के भीतर महत्वाकांक्षाओं की लहरें उमड़ रही है। लेकिन हे नारद मुनि जी, कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग दीजिए जिससे मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मार्गदर्शन दें। तो नारद मुनि ध्रुव महाराज के इन वक्तव्यों को सुनकर प्रभावित होते हैं। ध्रुव महाराज के हृदय में अपनी इच्छा को पूर्ण करने की ऐसी एक तीव्र लालसा थी कि उसको देखकर नारद मुनि प्रभावित होते हैं। तो कथा को हम आगे बढ़ाते हैं और नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को जो आदेश दिए उन पर हम चर्चा करेंगे। तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को मुख्य रूप से तीन प्रकार के आदेश दिए। सबसे पहले नारद मुनि कहते हैं, बेटा ध्रुव, आप मुझे गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हो तो मेरा प्रथम आदेश यह है कि आप मधुवन में जाइए। वृंदावन के 12 वनों में एक वन है मधुवन, जो यमुना तटवर्ती है। वहां जाकर आप यमुना नदी में, पवित्र यमुना नदी में दिन में 3 बार स्नान कीजिए और अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए। यह है पहला आदेश कि हमें एक पवित्र स्थान में स्थित होने का प्रयास करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने भी 5 प्रमुख आदेश दिए हैं जो कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं, और उनमें से एक ये है कि हम किसी शुद्ध पवित्र स्थान में जाकर निवास करें, किसी भगवान के धाम में निवास करें। और भगवान का निवास न हो तो कम से कम अपने घर को उनका निवास स्थान बनाने का प्रयास करें, या तुलसी महारानी का जहां निवास हो वहीं पर अपना निवास बनाएं। वर्णन आता है कि जिस स्थान में हम निवास करते हैं उस स्थान से लगी हुई अनेक तरंगों का हम पर महान प्रभाव पड़ता है। रामायण में इसका एक सुंदर उदाहरण उपलब्ध होता है कि किस प्रकार जिस स्थान में आप निवास करते हो उस स्थान का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। वनवास का प्रसंग है, तब रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता देवी के साथ वन में विचरण कर रहे हैं। विचरण करते हुए वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं, अकस्मात लक्ष्मण के हृदय में एक इच्छा जागृत हो जाती है, एक विचार उत्पन्न होता है। लक्ष्मण विचार करने लगते हैं, मैं राम के साथ दर दर क्यों भटक रहा हूं, मैं राम की सेवा क्यों कर रहा हूं, राम की सेवा करने का तात्पर्य क्या है? अरे वनवास तो उसे हुआ है, अरे वनवास जब उसको हुआ है तो मैं उसके साथ क्यों जा रहा हूं। और इस प्रकार बड़े ही भयंकर विचार आने लगे। कुछ समय के पश्चात एक पोटली जो उनके पास थी वो पोटली नीचे धरती पर रख दिए और विश्राम करने लगे, तो अचानक ये विचार गूढ़ हो गए और फिर मन शांत हो गया। फिर लज्जा की भावना से वो युक्त हो गए कि मैं क्या कुत्सित विचारों से पूर्ण था, ये कैसे कुत्सित विचार मैं अपने मन में ला रहा था, ऐसे अपराध युक्त विचार मैं अपने मन में कैसे पाल रहा हूं, ये बड़ी रहस्यमय बात है। तो फिर अचानक वो पोटली उठाकर आगे चलने लगे, फिर वही विचार मन में उड़ भरे कि ये मैं क्या कर रहा हूं, रामचंद्र जी की सेवा क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे कारण क्या है, मुझे ऐसे सेवा नहीं करनी चाहिए। और फिर जब वो पोटली नीचे रखे फिर वो विचार दूर हो गया। बारंबार ये घटना घट रही थी और कुछ भ्रमित से हो रहे थे, विचार करने लगे इसके पीछे क्या रहस्य है। तो रामचंद्र जी के समक्ष अपनी समस्या को प्रस्तुत किए। रामचंद्र जी सुनकर कहने लगे, अरे लक्ष्मण, क्या इस पोटली में उस स्थान की मिट्टी है जहां हम पिछले रात को निवास किए थे, जो पोटली जो तुम्हारे साथ है इस थैले में कहां की मिट्टी है। लक्ष्मण ने कहा, कल रात को हम लोग जहां निवास किए वही की मिट्टी है। रामचंद्र जी बोले, अब मैं तुम्हें उस मिट्टी का एक इतिहास सुनाता हूं। जिस स्थान पर हम लोग रात्रि को निवास किए और जहां से तुम वो मिट्टी लेके आए, वास्तव में उस स्थान में घटना घटी थी। दो महान असुर थे, उनका नाम था सुंद और उपसुंद। सुंद और उपसुंद भीषण तपस्याएं करने के पश्चात ब्रह्मा जी को संतुष्ट किए और ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के पश्चात उनसे वर मांगने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या वर चाहते हो। दोनों ने कहा, अपार शक्ति और महाबली होना चाहते हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाए कि विश्व की कोई भी शक्ति हमें नष्ट न कर पाए, हम अजेय हो जाएं। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, हां यदि कोई शक्ति हमारा विनाश करना ही चाहे तो केवल हम दोनों जब आपस में कलह करें तब हमारा विनाश हो, अर्थात सुंद उपसुंद को मार सके और उपसुंद सुंद को, अन्यथा दूसरी कोई शक्ति उन्हें विनष्ट नहीं कर सकी। तो उन्होंने कहा, तथास्तु। और सुंद और उपसुंद दोनों को ऐसा लग रहा था कि कोई भी शक्ति हमें नष्ट नहीं कर सकती और हमारे बीच कलह उत्पन्न नहीं कर सकती। देवताओं को इस बात का ज्ञान हुआ। देवताओं ने एक सुंदर अप्सरा को उनके समक्ष भेज दिया। अप्सरा का नाम था तिलोत्तमा। सुंदर अप्सरा सामने से साक्षात आने लगी। सुंदरी उस अप्सरा को देखा, अप्सरा को देखकर उसके प्रति आकर्षित हुआ और कहने लगा, अरे बड़ी सुंदरी आ रही है, ये तो मेरी है, ये तो मेरी है। तो पुसुम ने कहा, हां हां, मेरी नहीं, मेरी भाभी है, बोलो, अर्थात ये मेरी है। उपसुंद उसके ऊपर अपना अधिकार जताने लगे। तो दोनों में कलह उत्पन्न हो गया और कुछ समय के पश्चात दोनों एक दूसरे को मार पीटने लगे, घूंसा लगाने लगे और कुछ समय पश्चात दोनों ने एक दूसरे का विध्वंस कर दिया। और रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहने लगे, हे लक्ष्मण, ये वही स्थान है, ये वही स्थान है जहां सुंद और उपसुंद के बीच महाकलह हुआ था और इस कलह की तरंगे अब भी यहां धरती में सुप्तावस्था में स्थित है, और इसलिए जब तुम इस मिट्टी को अपने हाथ में धारण करके भ्रमण कर रहे हो, इन तरंगों का असर आप पर हो रहा है, अर्थात जिस स्थान में जैसे कार्य किए जाते हैं, जिस प्रकार के प्रकृति के गुणों का उन पर प्रभाव पड़ता है, उनकी तरंगों के माध्यम से हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। अर्थात जिस स्थान में अनेक अनेक पाप हो रहे हों, जहां जन सामान्य बुरी तरह इंद्र तृप्ति के कार्यों में लीन हो, जहां अय्याशी ही जीवन का स्तर हो, ऐसे स्थान में भक्ति करना बहुत कठिन है। हम उस स्थान की तरंगों से बारंबार प्रभावित हो सकते हैं और इसलिए हमें प्रभावित होने से बचना है और इसलिए ऐसे स्थानों में आना है जहां भगवत भक्ति की चर्चा हो, जहां भगवान की कथाओं का गान हो, जहां भक्तों का निवास हो, जहां कृष्ण की सेवा हो, कृष्ण की पूजा हो। और यहां कलकत्ता से निकट श्रीधाम मायापुर है, नवद्वीप है, तो प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से बचने के लिए बीच बीच में मायापुर धाम जाकर कुछ समय बिताकर हम यहां आ सकते हैं और इससे हमारे चित्त का शुद्धिकरण होता है, चित्त का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रामानुज के जीवन काल में एक ऐसी अद्भुत लीला हुई। श्रीपद रामानुजाचार्य अपने कुछ भक्तों के साथ तिरुपति पर गए थे। भगवान बालाजी के दर्शन करने के पश्चात श्रीपद रामानुजाचार्य अपने कुछ अनुयायियों के साथ नीचे आ रहे थे। बीच रास्ते पर उन्होंने ये विचार किया कि अब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद की कुछ पोटली थी वो खोल दी और आपस में प्रसाद वितरित करने लगे। तभी उन्होंने पाया कि प्रसाद की थैली में एक चींटी है। उस चींटी को देखकर रामानुजाचार्य अकस्मात बोल पड़े, अब हमें इस चींटी को वापस ऊपर तिरुमला में छोड़ना है। तो सारे भक्तगण कहने लगे, गुरुदेव ये चींटी तो अब हमारे प्रसाद के साथ नीचे आ गई है, आधा रास्ता हम तय कर चुके हैं, हम मार्ग के मध्य में स्थित हैं, अब पुनः वापस लौट के जाना काफी विलंब हो जाएगी हमारी यात्रा में। अरे चींटी ही तो है, इस चींटी को हम लिए चलते हैं, क्या अंतर पड़ेगा? और रामानुजाचार्य ने कहा, देखिए सैकड़ों वर्षों की भीषण तपस्याओं के पश्चात किसी सौभाग्यशाली जीवात्मा को धाम में जन्म प्राप्त होता है। अरे ये कोई सामान्य जीव नहीं, ये महासौभाग्यशाली जीव है। स्थूल दृष्टि से ये केवल एक चींटी दिखता है, लेकिन ये केवल एक चींटी नहीं, ये एक महात्मा है, क्योंकि धाम ने इसने जन्म प्राप्त किया है। इसलिए इस धामवासी को धाम से दूर करने का, पृथक करने का हमारा कोई अधिकार नहीं बनता। चलिए इसे वापस धाम में पहुंचाकर आते हैं। और श्रीपाद रामानुजाचार्य स्वयं अपने हस्त कमलों में एक चींटी को ऊपर लेकर गए और बालाजी के मंदिर के प्रांगण में उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़कर वापस लौट गए आए। अर्थात वो इस बात को सिद्ध करना चाहते थे कि पवित्र स्थान में जन्म प्राप्त होना भी बड़ी सौभाग्य की बात है। तो इसलिए नारद मुनि का ये पहला आदेश है, अगर जन्म प्राप्त करना चाहते हो तो किसी पवित्र धाम में जन्म प्राप्त करो, और यदि धाम में जन्म प्राप्त नहीं हुआ है तो बारंबार धाम में जाकर चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करो। और जिस वातावरण में हम निवास करते हो उसे भी धाम के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करो। और यदि हम अपने घर को धाम बनाना चाहते हैं तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए श्रीपाद नारद मुनि अपना दूसरा आदेश दे रहे हैं, और वो क्या है? वो कहते हैं एवं भगवत रूपम सुभद्रम ध्यायत मन निवृत्त्या परणयातूर्णम संपन्नम अनुवर्तते। हे ध्रुव, आप भगवान के सुंदर रूप पर ध्यान लगाओ। और नारद मुनि ध्रुव महाराज को भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं। ब्रह्म पंडिता में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं वेणुं क्वनन्तमरविन्द दलाय साक्षं बर्हावतं समसितं मृद सुन्दरांगं कन्दर्प कोटि कमनीय विशेष स्तोभं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान श्री गोविंद का रूप इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है, हस्तकमलों में वेणु लिए हैं, सुंदर मोरपंख से सुसज्जित हैं, पीत वस्त्रधारी नटवेशधारी भगवान श्री कृष्ण के रूप को देखकर भला कौन व्यक्ति आकर्षित नहीं होगा। ब्रह्मा जी स्वयं आकर्षित हो रहे हैं, शिवजी स्वयं आकर्षित हो रहे हैं और कह रहे हैं दर्शनम न दिदृक्षु नाम देही भगवतार्चितम रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। हे कृष्ण, कृपा करके अपने सुंदर श्यामल त्रिभंग रूप का दर्शन दीजिए। दर्शनम न दिदृक्षु नाम, हे कृष्ण आपके इस सुंदर रूप के दर्शन का अभिलाषी हूं। देही भगवतार्चितम, और ये इतना सुंदर रूप है जो भगवान के भक्तों द्वारा निरंतर अर्चित होता है। रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजनम, और ये सुंदर रूप निरंतर आपके भक्तों के द्वारा अर्चित होता है और भक्तों को बहुत अधिक प्रिय होता है। भगवान के नाना प्रकार के रूप हैं, लेकिन नाना प्रकार के रूपों में भक्तों को भगवान श्री कृष्ण का ये त्रिभंग रूप सबसे अधिक प्रिय है। रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजनम, कृष्णा का रूप बहुत ही सुंदर है, कृष्णा का मनमोहक रूप चित्त को हर लेता है। अरे बिना कृष्ण के हमारा हृदय निरंतर भौतिक इच्छाओं के बवंडर से आंदोलित रहता है, और ऐसी परिस्थिति में चित्त को शांति कहां, चैन कहां, सुकून कहां। यदि इंद्रियों को हम तुष्ट करना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं और काम वासनाओं की इस खुजली को मिटाना चाहते हैं तो केवल कृष्णा के संपर्क में यह संभव है। जब तक जीवन में कृष्णा नहीं आएंगे तब तक शांति नहीं आएगी। रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजनम, और कृष्णा के रूप का ऐसा सौंदर्य है सर्व इंद्रिय गुणांजनम, हमारी सारी इंद्रियां पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाती हैं केवल कृष्ण के सुंदर रूप के दर्शन से। शिवजी भगवान के ऐसे रूप के दर्शन करने के अभिलाषी हैं। जब देवताओं में श्रेष्ठ महादेव शिवजी, ब्रह्मा जी और अन्य महात्मागण भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप के दर्शन के अभिलाषी हैं, आकांक्षी हैं, तो इन सभी के उदाहरण से हमें यह प्रोत्साहन लेना चाहिए कि हमें भी अपने जीवन का केंद्र बिंदु कृष्ण को ही बनाना चाहिए। और नारद मुनि ध्रुव महाराज को यही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ध्रुव, आपके हृदय में अपने पिता से भी अधिक श्रेष्ठ साम्राज्य प्राप्त करने की इच्छा है,
इस प्रक्रिया को आरंभ करो, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण के सुंदर मूर्ति की स्थापना करो। और वो कह रहे हैं इसकी पूजा करने से, इसका ध्यान लगाने से क्या लाभ प्राप्त होगा। एवं भगवत रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः, एवं भगवत रूपम, भगवान के ऐसे रूप का दर्शन करने मात्र से, भगवान के ऐसे सुंदर रूप का मनन और चिंतन करने मात्र से जीवन में महान परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन आएगा? सुभद्रम ध्यायतो मनः, आपके जीवन में सुभद्र अर्थात जीवन के जितने अनिष्ट हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। सुभद्र अर्थात शुभ, हम सभी अपने जीवन में कुछ शुभ अवसर प्राप्त करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू ब्रिंग ऑस्पिशियसनेस इन अवर लाइव्स। कौन व्यक्ति है जो अपने जीवन को अशुभ बनाना चाहता है और इस प्रकार अपने जीवन को शुभ बनाने के लिए हम अनेक अनेक प्रयास करते हैं और कभी कभी हमें लगता है कि केवल धन संपत्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि के अर्जन से हर प्रकार की शुभ स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। तो यहां वर्णन आ रहा है जब कृष्ण के रूप का आप दर्शन करोगे तब धीरे धीरे आपके जीवन में शुभ परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। कई बार लोग घर में इस प्रकार का एक चिन्ह बांध कर रखते हैं और उसमें लिखा रहता है शुभ लाभ। स्वस्तिक का चिन्ह होता है और नीचे लिखते हैं शुभ लाभ, लेकिन वास्तव में शुभ क्या है? और कभी कभी लोग विचार करते हैं लाभ आ जाए तो बस काफी है, शुभ हो न हो लाभ होना चाहिए। और कई बार लोग घर में लक्ष्मी पूजा इत्यादि करते हैं और विशेषकर भारत में ये बहुत प्रचलित है और लोग विचार करते हैं कि घर में लक्ष्मी पूजा करें तो धन संपत्ति एकत्र हो तो सब कुछ शुभ हो जाएगा। और जिस दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं इस तरह की विधि प्रचलित है, लोग अपने घर के दरवाजे द्वार खिड़की इत्यादि खोल के रखते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता लक्ष्मी जी कौन से द्वार से आएगी। जिस दिशा से भी आ जाए लक्ष्मी देवी अंदर आ जाना चाहिए, इसलिए सारे द्वार सारी खिड़कियां खोल कर रखते हैं और बड़े प्रेम से पूरी श्रद्धा से लक्ष्मी पूजा इत्यादि करते हैं। और कभी कभी लक्ष्मी जी के साथ नारायण आ जाए तो नारायण को बोल देंगे जरा पड़ोसी का चले जाओ, लक्ष्मी जी आप आ जाओ अंदर। दोनों में से अधिक लक्ष्मी जी वीआईपी हैं, वीआईपी का पास उनको देंगे। लेकिन वास्तव में यहां पर नारद मुनि ध्रुव महाराज को बता रहे हैं जब नारायण की पूजा करोगे तो अपने आप सब कुछ शुभ हो जाएगा। एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः, कृष्ण की सेवा कीजिए, कृष्ण की पूजा कीजिए, अपने घर में कृष्ण का मंदिर स्थापित कीजिए। कृष्ण के अर्च विग्रह न हो तो कम से कम राधा कृष्ण के कुछ फोटो रखिए और उसकी सेवा पूजा कीजिए। इसका क्या परिणाम होगा? निवृत्त्या परया तूर्णम संपन्नम न निवर्तते, आपके हृदय के सारे अभद्र नष्ट हो जाएंगे। संपन्नम न निवर्तते, इतनी आत्मीय शांति की अनुभूति होगी कि उस पद से आप कभी नीचे गिरकर नहीं आओगे। ऐसा संतोष, ऐसी शांति, ऐसे सुख की अनुभूति होगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार लोग प्रश्न करते हैं ये आप हिंदू लोग भगवान की पूजा करते हो, सेवा करते हो मंदिरों में जाकर, अरे इसका क्या लाभ है? ये तो मूर्ति पूजा है, इसका हम खंडन करते हैं। ऐसे मूर्ति पूजाओं से भला कोई किसी को लाभ प्राप्त होता है क्या? लोग कई बार कठोर शब्दों में भगवान के विग्रह की आराधना की निंदा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं पत्थर के मूर्तियों की आप सेवा पूजा क्यों करते हो? तो प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में ये संगमरमर जो धरती पर है वो भी संगमरमर है, जो विग्रह के रूप में वो भी संगमरमर है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो वो भी पेपर है, और जेब में 500 का नोट है वो भी पेपर है। हर महीने आपके घर में रद्दी वाला आता होगा, रद्दी वाले को आप कौन सा पेपर देते हो? उसको घर के अंदर लेके जाते हो, तिजोरी खोलते हो और कहते हो क्या ये सब पेपर ले जाओ, मेरे घर में बहुत पेपर जमा हो गया, इसमें सब 500 500 500 500 लिखा हुआ है, बहुत सारा पेपर है, चाहे तो ले जाओ किलो के भाव से तोलकर दे देते हैं। बोले नहीं भाई पागल हो गए क्या, क्या बात कर रहे हो, मूर्ख हो गए क्या, ये तो पैसा है भाई, ये कैसे देंगे। और मान लो किसी कमाने वाले को पेपर वाले को आप ऐसा कर भी दिए तो वो समझेगा आप पागल हो गए पूरा, कबाड़ी वालों का लाइन लग जाएगा आपके घर के सामने। और मान लीजिए आप कहीं जाते हो, जैसे ट्रेन में गए और देखा कि ट्रेन में कुछ धूल लगी हुई है सीट पर, तो क्या करते हो, 500 का नोट निकाल के साफ करोगे? नहीं, क्योंकि जानते हो ये विशेष है, पेपर है लेकिन सामान्य पेपर नहीं। कहीं किसी स्टॉल पर चले गए खाने के लिए और खाने के लिए वो बोलता है कि पेपर खत्म हो गया, अब बोलो कोई बात नहीं मेरे पास एक 10 का नोट है इस पर रख दो, ये इसको प्लेट बना लेते हैं। नहीं, अर्थात ये भी पेपर है वो भी पेपर है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि इस पर अधिकार है, सरकार का अधिकार है और कुछ अलग ऊर्जा का संचार इसमें हो रहा है। इसी प्रकार ये भी पत्थर है वो भी पत्थर है, दोनों समान नहीं, इसमें भगवान की शक्ति का संचार हो रहा है, वह भगवान से अभिन्न है, और क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है उसकी सेवा पूजा होनी चाहिए, वो कृष्णा है, और इसलिए कृष्ण की सेवा पूजा मंदिर में हम साक्षात करते हैं। एक और उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वो ये कि आप टीवी देखना चाहते हो तो यहां पर अनेक अनेक चैनलों के तरंगे सर्वव्यापी हैं, आपको जो चैनल चाहिए उसके तरंगे यहां घूम रही हैं, आपको सोनी टीवी देखना है, स्टार प्लस देखना है, ये देखना है, वो देखना है, वो सारी ध्वनियां वो सारी तरंगे यहां भटक रही हैं। तो किसी को कोई कार्यक्रम देखना है तो देख लो, सारी तरंगे सब दिशाओं में है। बोलेगा नहीं हमको टीवी सेट चाहिए। टीवी सेट चाहिए क्यों चाहिए? क्योंकि तरंगे सर्वव्यापक हैं लेकिन हम इस स्थूल दृष्टि से उनको देख नहीं पाते, उन तरंगों को पकड़ने के लिए हमको टीवी का सेट चाहिए। कार्यक्रम देखना है तो टीवी का सेट चाहिए, भगवान को देखना है तो बोलते यहां वहां देख लो सब जगह है भगवान। जिस प्रकार भगवान सब जगह है उसी प्रकार ये टीवी के सारे चैनल सब जगह है, तो आपको टीवी का सेट क्यों चाहिए? भगवान के उस ऊर्जा को पकड़ने के लिए भगवान एक विशेष रूप धारण करते हैं, और श्रीपाद नारद मुनि जी उस रूप की सेवा पूजा का ही वर्णन कर रहे हैं। एवं भगवत रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः निवृत्त्या परया तूर्णम संपन्नम न निवर्तते। ऐसे भगवान के रूप का ध्यान लगाकर हम पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। अंग्रेज सरकार कभी इस बात को समझ नहीं पाई कि ये जगन्नाथ रथ यात्रा क्या है। अंग्रेजों ने यहां पर जितने भी वर्ष राज शासन किया वो हर वर्ष भ्रमित रहते थे कि हर वर्ष जुलाई जून जुलाई के महीने में लाखों लोग ये पुरी में क्यों आते हैं? इस पत्थर के लकड़ी के एक मूर्ति को खींचने के लिए लाखों लोगों की क्या आवश्यकता है? कभी वो समझ नहीं पाए रथ यात्रा क्या है। अनेक अनेक अंग्रेजी लेख प्रस्तुत किए जगन्नाथ रथ यात्रा को खंडन करते हुए, उसकी निंदा करते हुए, भरपूर प्रयत्न किए रथ यात्रा को रोकने का, लेकिन अंग्रेजी सरकार इस कार्य में सफल नहीं हो पाई। जगन्नाथ रथ यात्रा को पुरी में रोक नहीं पाए, लंदन में जगन्नाथ रथ यात्रा आरंभ हो गया है। अर्थात किसकी जीत हुई? जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ स्वामी की। अर्थात ये कोई लकड़ी नहीं, ये कोई पत्थर नहीं, ये स्वयं साक्षात भगवान है। निवृत्या परया पूर्णम संपन्नम न निवर्तते। और ऐसे भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होकर हम जीवन में असली संतोष और सुख प्राप्त करेंगे। अर्थात आपको अपने जीवन का केवल केंद्र बदलना है। अभी स्वयं को जीवन का केंद्र बना रहे हो, स्वयं के भोजन रहन सहन पोशाक इत्यादि के विषय में चिंतन कर रहे हो, भगवान को अपने घर का केंद्र बनाइए और भगवान के लिए अनेक प्रकार के कार्य कीजिए। आपके घर में राधा और कृष्ण का फोटो रखें, नहीं तो विग्रह हो तो उसकी सेवा करें। क्या करना है आपको? जो कुछ भी आप घर में भोजन बनाएं, भगवान के लिए अलग प्लेट रखें और उस प्लेट में घर में बनाए हुए सारे व्यंजन भगवान के समक्ष अर्पित करें। और जो कुछ भी भगवान को भोग लगाया, उसे प्रसाद के रूप में सारे परिवार स्वीकार करें। तो क्या ये कोई कठिन प्रक्रिया है? बहुत ही आसान है। भगवान को संतुष्ट करने का बहुत ही आसान मार्ग है। कोई भी व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतार सकता है। आप सभी इसे अपने जीवन में उतार सकते हो। बस चेतना को परिवर्तित करना है, यत्र तत्र कुछ परिवर्तन लाने हैं। ये आप सभी के लिए संभव है। तो इसलिए दूसरा आदेश जो यहां पर दे रहे हैं वो ये कि भगवान के रूप पर ध्यान लगाएं, भगवान के रूप का चिंतन करें। यदि चिंतन नहीं करेंगे तो चिंता करेंगे। इसलिए भगवान का रूप बहुत ही सुंदर है और चिंतन करने योग्य है। और इसके साथ साथ अब नारद मुनि जी तीसरी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, और वो क्या है? वो कहते हैं जपश्चा परमो गुह्यम श्रूयताम नृपात्मजान यम सप्तरात्रं प्रपठन तुमान पश्यति खेचरान। हे ध्रुव, अब मैं तुमको वह गुह्य ज्ञान देने वाला हूं, बड़ा ही गुह्य रहस्यमय मंत्र प्रदान करने जा रहा हूं, जिस मंत्र के उच्चारण मात्र से आपका हृदय आनंद और उल्लास से आप्लावित हो जाएगा, आपके हृदय में क्रांति छा जाएगी। ये मंत्र मैं आपको प्रदान करने जा रहा हूं। मंत्र जो मन को चिंता से अशांति से मुक्त करे उसे कहते हैं मंत्र। हम सभी निरंतर चिंता करते रहते हैं, मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते रहते हैं, और मनोचिकित्सकों के अनुसार हमारे मन में जितने 99% विचार होते हैं, भय होते हैं, वो कभी फलित होते ही नहीं। हम केवल व्यर्थ चिंता करते रहते हैं, भयभीत रहते हैं। शरीर के व्यायाम के लिए मनुष्य ने अनेक प्रकार के साधन तैयार किए हैं। लोग सुबह उठ के योग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तैरने जाते हैं, या एक स्थान पर खड़े होकर ऊपर नीचे कूदते हैं। पूर्व काल में लोग साइकिल चलाकर जाते थे, आजकल एक ही जगह पर साइकिल चलाते हैं। तो ये सब अनेक अनेक उपाय तैयार किए हैं कि वह कुछ कसरत कर सके, व्यायाम कर सके।
शरीर के व्यायाम के लिए अनेक साधन बनाए हैं, लेकिन मन के व्यायाम के लिए क्या बनाया है? मन के व्यायाम के लिए हमने क्या तैयार किया है? मन के व्यायाम के लिए कोई साधन है? हाँ है, वो है मंत्र का जप। ये मन के व्यायाम के लिए ही सुंदर उपाय है। जब कोई व्यायाम करने जाता है तो हम डरते नहीं, कहीं दिन भर व्यायाम तो नहीं करता रहेगा, हम जानते हैं। कुछ देर के लिए व्यायाम करेगा, उसके पश्चात अपने दिनचर्या में लग जाएगा। लेकिन वह जो व्यायाम करता है वह उसे संपूर्ण दिनचर्या में स्वस्थ, विश्व पुष्ट और तंदुरुस्त रखता है। उसी प्रकार कुछ समय निकालकर यदि आप अपने प्रतिदिन के दिनचर्या में नाम जप को स्थान दें तो आपका मन निरंतर संतुष्ट और शांत रहेगा और आपकी दिनचर्या में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। निर्बाध रूप से अपने दैनिक कार्यक्रमों में आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसलिए यहां पर नारद मुनि ये तीसरी शिक्षा दे रहे हैं। जपस्या परमो गुह्यम श्रूयताम निंद्रपात्मज। ये मैं जप आपको बताने जा रहा हूं, इस नाम का जप करें। इसलिए नाम के जप की बड़ी महिमा है। कृष्णा अपने नाम से अभिन्न है, कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। अरे लोग आज कलयुग में हाथ में थोड़ा सा तंबाकू रखो तो खुद जोर जोर से ताली पीटेंगे। अर्थात ये कलयुग का प्रभाव है, इसलिए हमको चाहिए कि नाम जप में रुचि ले और हमारी दिनचर्या में नाम जप को थोड़ा स्थान दे। केवल आधा घंटा, एक घंटा, जितना भी यथाशक्ति आपको प्रयास करने का समय मिले, ये नाम जप करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए यहां पर नारद मुनि ध्रुव महाराज को एक मंत्र दे रहे हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग, इस काल के लिए हम सभी को एक दूसरा मंत्र दिया। वो सतयुग था, ये कलयुग है, वो ध्रुव है, हम ध्रुव नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने देश, काल और पात्र के अनुसार हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किया है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये महामंत्र उस समय विशेष मंत्र नारद मुनि ने गुरु महाराज को दिया और कहने लगे, मंत्रे नानेन देवस्य कुरिया द्रव्यमयी बुधा सपर्याम विविधे द्रव्ये देश काल विभागवे। मंत्रे नानेन देवस्य, भगवान के इस सुंदर नाम के मंत्रों का उच्चारण करो। इस मंत्र में बड़ी शक्ति है, इस मंत्र के उच्चारण से हृदय में महान परिवर्तन होगा। और कुरियात द्रव्यमयीं बुधा, इस मंत्र के उच्चारण के साथ साथ भगवान के रूप की पूजा भी कीजिए। इस मंत्र के उच्चारण में किसी प्रकार के साधनों की आवश्यकता नहीं। यह मंत्र का जप इतना शक्तिशाली है कि निकृष्ट पाप पूर्ण जीवन से उठाकर हमें सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट भगवत धाम, भगवत जगत में प्रवेश दिला सकता है। अम्बरीश महाराज के एक छोटे भाई थे, बड़े पापी थे, उनका नाम था पाप राजा। एक बार नारद मुनि उनके निकट आए और उनको कहने लगे, हे पाप राजा, आप भगवान के नाम का जप कीजिए और उनको राम नाम का उच्चारण करने का एक अवसर दिया। जब मृत्यु की घड़ी आई मृत्यु होने के तुरंत पश्चात उनको यमलोक लेके गए और यमलोक जाने के पश्चात यमराज से वो प्रश्न करने लगे कि मुझे नारद मुनि ने राम नाम उच्चारण करने का आदेश दिया था, मैं तो महापापी था, राम के नाम का मैंने उच्चारण तो किया लेकिन ये राम नाम की महिमा क्या है, राम नाम की महिमा क्या है आप बता सकते हैं? तो यमराज कहने लगे कि भाई ये राम नाम की महिमा तो मैं स्वयं नहीं जानता, लेकिन मुझसे भी श्रेष्ठ कुछ अधिकारी हैं जैसे ब्रह्मा जी, हम ब्रह्मा जी को पूछ के देखते हैं शायद वो हमको बताएं। तो पाप राजा को लेते हुए ब्रह्मा जी के पास यमराज पहुंच गए और ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, ये राम नाम की महिमा आप बता सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, बड़ा कठिन प्रश्न किया है, राम नाम की महिमा तो बड़ी अगाध है लेकिन इसकी सीमाएं क्या है वो तो मैं भी नहीं जानता, मेरे विचार से शिव जी को पूछना चाहिए। तो पाप राजा, यमराज और ब्रह्मा सभी शिव जी के पास पहुंचे, कह रहे महादेव जी एक प्रश्न है। महादेव ने ब्रह्मा को देखा, ब्रह्मा जी आप कौन सा प्रश्न लेके आए हो? अरे क्या करोगे यमराज, बड़ा जटिल प्रश्न लेके आए हैं मेरे पास, ये राम नाम की महिमा क्या है वो जानना चाहते। शिव जी भी सर खुजलाने लगे, विचार करने लगे, ये क्या, ये तो बहुत ही कठिन प्रश्न है क्योंकि राम नाम की महिमा कितनी है वो मैं कैसे जान सकता हूं। मेरे विचार से केवल स्वयं रामचंद्र जी ही इसका उत्तर दे सकते हैं, जब उनके नाम को लेकर इतना सब कुछ प्रश्न चल रहा है तो उनके पास जाना ही ठीक है। तो ये सभी लेकर ये प्रश्न वहां रामचंद्र जी के दरबार में पहुंच गए। रामचंद्र जी कह रहे, महादेव जी, ब्रह्मा जी, यमराज जी, आप सभी यहां आए हो, क्या बात है, कोई इमरजेंसी है क्या? बोले नहीं, एक बहुत जटिल प्रश्न किया गया है, हमको उसका उत्तर लेने आए हैं। ये पाप राजा है, नारद मुनि ने राम नाम को जपने कहा था, राम नाम जपते थे लेकिन अब इसकी महिमा जानना चाहते हैं। तो रामचंद्र जी ने कहा कि राम नाम की महिमा यह है कि जो भी राम नाम की महिमा जानना चाहे उसे ब्रह्मा यमराज शिवजी स्वयं मेरे दरबार में लेके आ जाते हैं। आप लोग सब आपस अपने अपने कार्यक्रम करने जाइए, पाप राजा को यही मेरे दरबार में छोड़ जाइए। यही इसकी महिमा है कि कोई भी चाहे कितना भी पापी हो सीधा पूछते पूछते मेरे दरबार तक पहुंच जाता है, अर्थात राम नाम के आश्रय से साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्राप्त हैं, साक्षात भगवान के दरबार में हम प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए भगवान के नामोच्चारण से हमारे जीवन में महान परिवर्तन हो सकता है। इसलिए यहां पर वो कह रहे हैं, मंत्रेणानेन देवस्य कुरिया द्रव्यमयीं बुधा। तो इस महामंत्र का उच्चारण प्रतिदिन भक्तगण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति शोधस्नाम नाम कलि कलमस नाशनम नातो परतर पायो सर्ववेदेषु दृश्यते। इसलिए इस महामंत्र के उच्चारण में बड़ी शक्ति है और यही तीसरा नियम नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को बताया। आइए सभी श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक इस महामंत्र का जप कुछ देर के लिए करें। सर्व महामंत्र के जप के समय तालियां बजाएं। और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि हरे कृष्ण कीर्तन में जब हम तालियां बजाते हैं तो हृदय में जितने पाप हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं, ये सभी पक्षियों की भांति आसमान में उड़ जाते हैं और हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम तो यहाँ इस श्लोक में नारद मुनि जी एक बहुत प्रमुख शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह है देश काल विभाग वित्त। गुरु महाराज वन के भीतर हैं, वन के भीतर किस प्रकार से अनेक प्रकार के द्रव्यों को उत्पन्न कर सकते हैं, भगवान की सेवा पूजा करने के लिए अनेक प्रकार के वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, वन के भीतर वो वस्तुएं कहां से प्राप्त होंगी, भोग लगाने की सामग्री कहां से लाएंगे, सेवा पूजा के लिए आरती के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो कहां से लाएंगे, टॉर्च विग्रह की आराधना हमें वो कैसे कर सकते हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं सपर्याम विविध द्रव्य देश काल विभागवित। देश काल विभागवित, देश और काल के अनुसार वह इसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। तो बहुत मुख्य बात श्री रूपा जी तात्पर्य में निवारण करते हैं कि जहां तक हमारे जीवन का प्रश्न उठता है देश काल और पात्र के अनुसार ही हम किसी भक्ति के कार्य को अपने जीवन में उतार सकते हैं। श्री रूपा जी वर्णन करते हैं जिस समय भीष्मदेव मनासन अवस्था में शरसैया पर लेटे हुए थे उस समय युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडवगण वहां आए और अनेक अनेक लोगों से जब सभी ऋषि मुनि संतगणों को यह समाचार प्राप्त हुआ कि भीष्म पितामह शरसैया पर निवास कर रहे हैं किसी भी समय मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं उस समय ये सब ऋषि मुनिगण अनेक अनेक लोगों से वहां उपस्थित हुए। अब जब महान भक्तगण आपके समक्ष आते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि उनका स्वागत करें उनका सत्कार करें, लेकिन भीष्म पितामह लेटे हुए हैं शरशैया पर स्वागत करने की बात तो दूर हो तो उठ भी नहीं सकते हिल भी नहीं सकते। अरे महान भक्तगण आए हैं स्वागत कैसे करें, तान समय तान महाभाग उपलब्ध वसुत्तम पूजय आस धर्मज्ञ देश काल विभाग। जब उन्होंने इन सभी महात्माओं को देखा तो लेटे लेटे ही उन्होंने मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने दंडवत प्रणाम उनको अर्पित कर दिए और मधुर शब्दों के माध्यम से उन्होंने उन सभी महात्माओं का स्वागत किया। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस बात की पुष्टि करते हैं कि भीष्म पितामह परावर वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं और इस बात को भली भांति जानते हैं कि धार्मिक सिद्धांतों का निष्कर्ष क्या है और महान आचार्य वो है जो देश काल और पात्र के अनुसार शास्त्र के निष्कर्षों को अपनाए और वितरित करे और इसलिए वास्तविक धर्मज्ञ वो है जो इस सिद्धांत को समझकर इसके अनुरूप कार्य करे। तो यहां पर गुरु महाराज की कथा में यही बात फिर स्पष्ट हो रही है, अर्थ विग्रह की आराधना करने के आदेश दे रहे हैं लेकिन देश काल और पात्र के अनुसार। प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक राष्ट्र में, प्रत्येक गांव में और शहर में, प्रत्येक मंदिर में विग्रह की आराधना की व्यवस्थाएं कुछ अलग अलग पृथक पृथक होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा पूजा करनी है। सनातन गोस्वामी जी मदन गोपाल की सेवा कर रहे थे, मदन मोहन की सेवा कर रहे थे और प्रतिदिन कुछ आटा जल में भिगो कर उसको मिश्रित करते, आग में कुछ जला लेते, पका लेते, बाटी बना लेते और वो बाटी रोज वो मदन मोहन जी को भोग लगाते थे। मदन मोहन जी एक वृक्ष के भीतर विद्यमान थे और इस प्रकार उनकी सेवा पूजा चल रही थी। एक दिन मदन मोहन जी अकस्मात सनातन गोस्वामी जी के समक्ष बोल पड़े, हे सनातन गोस्वामी जी, रोज मुझे ये आटा खिलाते हो, बाटी खिलाते हो, कम से कम थोड़ा नमक तो डाल के खिलाओ। अरे फीका खिला रहे हो, कुछ नमक तो जोड़ दो। और सनातन गोस्वामी जी बोले, अरे मुझे दूसरा कोई काम नहीं है क्या, अभी मैं आपको नमक खिलाऊंगा, आप नमक मांग रहे हो, कल मिष्ठान मांगोगे, पता नहीं फिर छप्पन भोग मांगोगे और फिर इन शास्त्रों का संकलन मैं कब करूंगा, इसलिए जो दे रहा हूं उसे संतुष्ट हो। लेकिन कुछ समय के पश्चात, क्योंकि वे इतने महान भक्त थे, वह वहां पर नमक के एक व्यापारी आए और उनकी नाव थक गई थी। उसके पश्चात सनातन गोस्वामी जी ने उनकी सहायता की और तब उनसे प्रसन्न होकर मदन मोहन जी की सेवा में कपूर जी ने एक महान मंदिर निर्मित किया, विशाल मंदिर की स्थापना की। अर्थात उस समय देश काल और पात्र के अनुसार जो कुछ भी उनके लिए संभव था वो कर रहे थे। लोग कहते हैं ये तो हमारा ही घर है, वास्तव में हमारा नहीं है, भगवान का ही घर है, लेकिन भगवान के लिए कोई स्थान नहीं रखते। कहते हैं भगवान का ही तो है, जो कुछ भी दिया है भगवान ने ही दिया है, ये सब उनका ही दिया हुआ है। तो आपके घर में भगवान का कोई फोटो है, भगवान का विग्रह कुछ है क्या? हाँ, वो कबर्ड के अंदर बिल्कुल रखा हुआ है। तो वास्तव में ये सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, तो भगवान को भी कुछ स्थान देना चाहिए और अपने सामर्थ्य अनुसार आपको ये कार्य करना है। तो जगन्नाथपुरी में भले 56 लोग लगे, लेकिन यदि हम वो न कर सकें तो जितना कुछ कर सकें अपने सामर्थ्य अनुसार, जो घर पर भोग बनता हो, जो परिवार के सदस्य खाते हो, वह सभी भगवान को भोग लगा के ही स्वीकार करें। श्रीमद् भगवान जी पाश्चात्य देशों में प्रचार करने गए, देश काल और पात्र के अनुसार उनको प्रचार करना था। अफ्रीका जैसे राष्ट्रों में भी वो प्रचार किए जहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि प्रचार संभव था, इतना भयंकर वहां पर प्रदेश था। और श्रीमद् भगवान सर्वप्रथम जब अफ्रीका में गए और वहां के लोगों को वो ज्ञान देने के लिए गए थे, अगले दिन सुबह जब वो क्लास के लिए आए तो सुबह सुबह वो वस्त्र पहनने गए, देखा कि जो कुछ भी उन्होंने कपड़े भिगा के लगाए थे वो सभी गुल हैं, किसी ने चुरा लिए, उनके अच्छे अच्छे नए कपड़े चुरा लिए। तो प्रभुपाद ने दूसरे कपड़े पहन लिए और फिर क्लास के लिए जब बैठे, सामने देखा कि सामने कई ब्रह्मचारी बैठे थे, उनके ऊपर प्रभुपाद के जो कपड़े अपने जैसे लगे, ये तो मेरे ही कपड़े कुछ दिखने लग रहे हैं। और प्रभुपाद ने देखा कि प्रभुपाद जी के कपड़े वो सब लोग उठाकर पहन लिए थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये ज्ञान नहीं था कि दूसरे के कपड़े नहीं चुराना चाहिए। तो प्रभुपाद जी राधा माधव गाने के पहले पहले यही बोले, कभी दूसरों के कपड़े मत चुराओ, ये भागवत की पहली शिक्षा है। ये भागवत देने से पूर्व ये शिक्षा देनी पड़ी, अपने कपड़े स्वयं पहनो, दूसरों के कपड़े मत पहनो। अर्थात इस स्तर पर उनको प्रचार करना पड़ा। और उसके पश्चात वर्णन आता है कि दूसरे भक्त जो वहां प्रचार करते थे, कई बार वहां पर 5 नियम बताते थे, जुआ न खेलना, परस्त्री संग न करना, मांसाहार न करना, मद्यपान न करना और मक्खी नहीं खाना। 5वां है मक्खी पकड़कर नहीं खाना। आप कोई विचार करेगा कि ऐसा क्यों नियम बनाया, मक्खी पकड़कर मत खाना, क्योंकि वहां ये आम बात थी। वहां पर दूर दूर तक कोई आपको मच्छर मक्खी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो भी दिखता है लोग पकड़ के खा लेते हैं। तो यहां पर लोग मक्खी और मच्छर से डरते हैं, वहां मक्खी मच्छर लोगों से डरते हैं। मक्खी और मच्छर से बचने के लिए हमने कॉयल वॉयल तो निकाल दिए, लेकिन वो क्या करेंगे। तो वहां पर ये आम बात थी। तो कई बार क्लास में बैठे बैठे लोग क्लास सुनते रहते और उनके आसपास कुछ मक्खी घूमता वो फटाक से पकड़कर मुंह में डाल देते। तो प्रवचन के बीच में उनको बोलना पड़ता था, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मक्खी नहीं खाना चाहिए। भारत में किसी को बोलो तो वो झापड़ लगाएगा, तो क्या बात कर रहे हो, अपमान करो मेरा। लेकिन इस स्तर पर जब लोगों की चेतना हो और इस प्रकार की आदतें हो, देश काल विभाजित, देश काल और पात्र के अनुसार उस समय उस स्तर पर जाकर वह प्रचार करना पड़ा। तो हम सभी को अपने जीवन में इस सिद्धांत को उतारना है और देश काल और पात्र के अनुसार भक्ति के नियमों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि नारद मुनि ध्रुव महाराज को मंत्र जप और अर्चविग्रह आराधना की सेवा पूजा करने की अनुमति दे रहे हैं और ध्रुव महाराज ने पहले ही इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मेरे अंदर क्षत्रिय भाव बहुत अधिक तीव्र है। अर्थात ध्रुव महाराज ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए थे, ब्राह्मण कुल में वो जन्म नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी मंत्रोच्चारण और अर्च विग्रह की सेवा की अनुमति उनको नारद मुनि प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि जब हम एक विशेष पद्धति के अनुरूप इसे अपने जीवन में उतारें तो ये उपयुक्त गुण हमारे अंदर विद्यमान हो जाते हैं। तो भक्ति लाने से पूर्व भले ही किसी भी प्रकार का कुल हो, किसी प्रकार की जाति हो, कैसे भी हमारे योगदान हो, कैसे भी हमारी आदतें हो, लेकिन भक्ति मार्ग से जुड़ने पर हमारे अंदर भारी परिवर्तन आ जाता है। अनेक अनेक नालियां, अनेक अनेक गंदी गलियों से निकलती हुई अंततोगत्वा गंगा जी में प्रवेश करती हैं, लेकिन गंगा जी में प्रवेश करने के पश्चात वो कभी गंगा जी ही कहलाती है। और अंततोगत्वा जो समुद्र में जिसका मिलन होता है वह गंगा का होता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी पद से पूरी तरह बदलकर परिवर्तित होकर उत्कृष्ट कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकता है। यह बड़ी आशाजनक बात है और इसलिए नारद मुनि ध्रुव महाराज को यह शिक्षा प्रदान करके तुरंत वहां से निकलते हैं। पुत्र का तो उद्धार कर दिया, अब जाकर देखना चाहते हैं कि पिता के जीवन में क्या चल रहा है। और नारद मुनि पहुंच जाते हैं उत्तानपाद के पास। उत्तानपाद नारद मुनि को देखकर अपने हृदय के दुर्दशा को व्यक्त करते हैं। तो नारद मुनि जी, अरे मुझे धिक्कार है, मैं कैसे मैं अपने पत्नी के वश में आ गया और अपने मासूम ध्रुव को, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, जो एक नन्हा सा अबोध बालक है, उसको मैंने राज्य से निर्वासित कर दिया। धिक्कार है मुझ पर, अरे मेरा हृदय पाषाण हृदय है, इस तरह के कार्य में कैसे कर पाया, मुझे विश्वास नहीं होता। और तब नारद मुनि ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद को कहने लगे, महाराज आप चिंता न करें, किसी भी प्रकार से ध्रुव को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, आपका पुत्र ध्रुव पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। और वो कहते हैं, मामांशु च स्वतनयम् तं देवार्पदिशं तत्रे, आपका पुत्र भगवान के नियमों के अधीन भगवान के साक्षात संरक्षण में स्थित है। देवगुप्तम विषम पते, अरे कृष्ण की रक्षा है उसे, कृष्णा जिसकी रक्षा करना चाहे उसका कौन बांका बाल बांका कर सकता है। ध्रुव अकेला नहीं है, ध्रुव को कृष्ण की रक्षा प्राप्त है, जिसे कृष्ण की रक्षा प्राप्त है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। महाभारत के इतने वर्णन आता है कि महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने दुर्योधन के कटु वचन सुने। दुर्योधन कहने लगा, भीष्म पितामह आप पांडवों से बहुत प्रेम करते हो, अपने सामर्थ्य अनुसार युद्ध नहीं कर रहे। दुर्योधन कभी संतुष्ट रहता ही नहीं था, हमेशा क्रोधित रहता था, भगवान का भक्त नहीं था ना। और कई बार लोग कहते हैं कि वास्तव में आप लोग दुर्योधन को व्यर्थ ही गालियां देते हैं। दुर्योधन और अर्जुन में क्या अंतर था? कोई विशेष अंतर तो नहीं था। दुर्योधन ने क्या बुरा किया था? आप दुर्योधन को इतनी गालियां क्यों देते हैं? अच्छा, अगर दुर्योधन इतना अच्छा था तो किसी के घर में किसी पुत्र का जन्म होता है तो उसका नाम कभी दुर्योधन तो नहीं रखते? कितने परिवार हैं जहां विचार करते हैं कि हमारे पुत्र का नाम दुर्योधन रखते हैं, चलो हमारे पोते का नाम दुशासन रखते हैं। सब जानते हैं हो न हो ये दुर्योधन में कुछ तो गड़बड़ था। ठीक तरह नहीं जानते क्या गलत है क्या गड़बड़ है, लेकिन कुछ तो है, अर्थात इसका नाम तो हम नहीं रखेंगे। तो दुर्योधन इस प्रकार भीष्म पितामह को दुख कराने लगा तो भीष्म पितामह कहने लगे, ठीक है आज हम आपको आश्वासन देते हैं, ये पांच तीर है ना, इन पांच तीरों का प्रयोग हम पांडवों के विनाश में करेंगे, इन पांच तीरों से हम पांडवों का विध्वंस करेंगे। दुर्योधन भीष्म पितामह को कहने लगा, पितामह जरा ये पांच तीर अपने पास में रख लेता हूं और कल सुबह युद्ध भूमि में आपको पहुंचा दूंगा। दुर्योधन तो राजनीति में निपुण था और निरंतर उसकी दुर्बुद्धि ऐसी चलती थी, और दुर्योधन को लग रहा था क्या भरोसा, रात को रात भीष्म पितामह का मूड बदल जाए तो क्या हो जाएगा, इसलिए पहले ही अपने पास सुरक्षित रख लेता हूं। पांचों तीर अपने पास रख लिए और तभी समाचार पांडवों के कैंप में पहुंच गया। सारे पांडव रात के सन्नाटे में सो रहे थे। कृष्ण भगवान रात्रि को निद्रा भंग करके भागे भागे अर्जुन के टेंट में आए। कृष्णा अपने भक्तों को क्षति पहुंचता हुआ देखकर घबरा जाते हैं। कृष्ण कभी अपने भक्तों का बाल बांका नहीं होने देंगे। कृष्ण को निरंतर अपने भक्तों की सुरक्षा का भय रहता है। तो भागे भागे आए और अर्जुन के टेंट में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि अर्जुन बिस्तर पर लेटकर सो रहा है। बड़ी मीठी निद्रा का वो आनंद ले रहा है। और जब अर्जुन सोते थे, क्योंकि वो इतने महान भक्त थे, उनके प्रत्येक श्वास से कृष्ण का नाम निकलता था। जब श्वास अंदर लेते और श्वास बाहर छोड़ते तो कृष्णा कृष्णा, इस प्रकार भगवान के नाम का जप उनकी निद्रा में होता था। और हमारे जप करते करते निद्रा आ जाती है, हमारा पेट कुछ उल्टा है। तो अर्जुन इतने महान भक्त थे, कृष्ण का नाम वो ऊपर नीचे ले रहे थे, कभी कृष्ण अर्जुन के शरीर को पकड़कर हिला न कर अर्जुन उठ गया। अरे अर्जुन समाचार सुना है क्या? अर्जुन उठकर कृष्ण को देखकर कहने लगे, अरे कृष्ण आप बड़े विचलित लग रहे हो, क्या बात है, कोई समस्या है क्या? अरे समस्या आप जानते हो, महाविपत्ति आन पड़ी है। विपत्ति? कैसी विपत्ति? अरे भीष्म पितामह ने यह प्रण किया है कि कल आप सभी का वो विध्वंस कर देंगे। उनका नाम ही है भीष्म, अर्थात जो एक बार व्रत ले ले तो कभी छोड़े नहीं, और भीष्म पितामह ने अब यह व्रत किया है तो मैं आपकी सुरक्षा के विषय में भयभीत हो रहा हूं अर्जुन। तो अर्जुन कृष्ण को देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, कृष्ण अभी तो कुछ समय पहले आपने मुझे गीता सुनाई, उसमें कहा ममे भक्त प्रणश्यति, तो ये तो भक्तों की रक्षा करने का डिपार्टमेंट तो आपका है, मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हो, मैं सोता हूं जाकर। और अर्जुन जाकर वापस सो गया और कृष्ण के ऊपर ये पूरा उत्तरदायित्व आ गया कि किस प्रकार भक्तों की रक्षा करें। अर्थात कृष्ण अपने भक्तों का विनाश कभी होने नहीं देंगे। भगवान के भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति शत प्रतिशत भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण के अधीन चलती है। इसलिए आप कह रहे हैं मामा शुच स्वतनयम देवगुप्तम विशांतते तत्प्रभावम उदिज्ञायन प्रावृंते यद्विषयो जगत। इसलिए आप चिंता न करें, आपका पुत्र बड़ा प्रतिभाशाली है, बहुत ही शक्तिशाली है, कृष्ण की कृपा उसे प्राप्त होगी, कृष्ण के संरक्षण में है। और आप नहीं जानते कि आपका पुत्र कितना महान है। और वो कहते हैं सुदुष्कुरं कर्म कृत्वा लोकपालैर अपि प्रभो। हे महाराज, जो बड़े बड़े देवता गण भी जैसा कर्म नहीं कर पाते, सुदुष्कुरं कर्म कृत्वा आपका पुत्र ध्रुव ऐसा दुष्कर कर्म कर दिखाएगा, इसके अंदर इतनी शक्ति है। पिछले बहुपा जी तात्पर्य में कहते हैं जीवन में सबसे कठिन कर्म क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना। कृष्ण को प्रसन्न करना सर्वाधिक कठिन कार्य है, और ध्रुव महाराज वो करने जा रहे हैं। और कहते हैं ऐश्यति अतिरतो राजन यशो विप्लयं तदा, और बहुत ही शीघ्र आपका पुत्र घर लौट आएगा और आपका यशोगान करवाएगा। आप महान भक्त ध्रुव के पिता के रूप में तीनों जगत में विख्यात हो जाएंगे। अर्थात हमें समझना चाहिए कि जब कोई भक्त बनता है तो उसका लाभ संपूर्ण परिवार को प्राप्त होता है। और इस प्रकार नारद मुनि जी उत्तानपाद को सांत्वना दे रहे हैं। और तब ध्रुव महाराज वृंदावन के मध्यम में अपनी तपस्याएं आरंभ करने जा रहे हैं। वर्णन आता है कि यमुना नदी की उत्ताल चपल तरंगे निरंतर वहां पर कोलाहल कर रही थी, और यमुना नदी के तट पर सुंदर सुंदर कंदराओं के भीतर भ्रमर समुदाय के गुंजारक, मयूरों की केका, कोयलों की काकली इत्यादि से संपूर्ण वन मदमत्त हो रहा था। और ऐसे सुरम्य वातावरण में बैठकर ध्रुव महाराज तपस्याएं आरंभ करते हैं। पहले मास में ध्रुव महाराज ऐसी तपस्याएं की, तीन दिन में एक बार वह कुछ फल खाते, दूसरे मास में छह दिन में एक बार वह कुछ नीचे पड़े हुए घास को स्वीकार कर लेते, तीसरे महीने में नौ दिन में एक बार वह कुछ जल प्राशन करते, और चौथे महीने में जल प्राप्त करना भी उन्होंने बंद कर दिया, केवल बारह दिन में एक बार श्वास लेते। पांचवे महीने में उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया, विचार किया बहुत इंद्रतृप्ति कर रहा हूं, बहुत श्वास ले रहा हूं, महान इंद्रतृप्ति है ये, इसे भी बंद कर देता हूं। और इस प्रकार ध्रुव महाराज ने ऐसी तपस्याएं की। और वर्णन आ रहा है इस श्लोक में त्रिराक्रांते त्रिराक्रांते पतित बदराशन आत्मवृत्ति अनुसारेण मासंगे अर्चयन हरि। आत्मवृत्ति अनुसारेण, अपने शरीर को बनाए रखने के लिए आत्मवृत्ति अनुसारेण, जो कुछ भी इस शरीर की देखभाल करने के लिए आवश्यक था ध्रुव महाराज ने वो किया। अर्थात हमें ध्रुव महाराज की इस कथा को सुनकर भयभीत नहीं होना चाहिए कि मंत्र के जप और विग्रह की आराधना करने के बाद ऐसी तपस्याएं मुझसे अपेक्षित हैं। नहीं, हम जिस परिस्थिति में क्यों न रहे, अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार भगवान की सेवा पूजा करें, निरंतर जो कुछ भी प्रसाद है उसे प्राप्त करें, और अपनी सारी शक्ति भगवान की सेवा में लगा दें। सुबह उठ के नाम जप करना, भगवान को भोग लगाना, फिर ऑफिस जाना, लौट कराना, फिर परिवार के सदस्यों को कीर्तन वगैरह करवाना, और फिर भगवान को इस प्रकार से आरती वगैरह करवाकर आप फिर अपने दिन के कार्यों को संपन्न कर सकते हो। ये अपेक्षा नहीं की जाती कि आप सब कुछ छोड़कर वन में जाओ और ऐसी तपस्याएं करो। आत्मवृत्ति अनुसारे है, अर्थात हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। गुरु महाराज महान भक्त थे, दूसरा युग था, बड़ा शक्तिशाली देह और इंद्रियां थी। उस समय ऐसे दुष्कर कर्म संभव थे, अब तो यह कलयुग में ऐसे कर्म संभव नहीं। इसलिए वर्णन आता है कि जो कुछ भी संभव हो आत्मवृत्ति अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। रामचंद्र जी अपने साथ वानर सेना लेकर लंका पर धावा बोलने गए थे, तो सभी बंदरों के अंदर एक इच्छा जागृत हुई। बंदर आपस में चर्चा करने लगे कि मानव समाज में लोग एकादशी करते हैं, उपवास रखते हैं, और हम लोग बंदर की तरह रोज खाते खाते रहते हैं, कभी उपवास नहीं करते। हम लोगों को उपवास करना चाहिए। तो दूसरे बंदर ने कहा, हाँ अच्छा आइडिया है, चलो हम लोग सभी उपवास करते हैं। तीसरे बंदर ने कहा, उपवास तो कर रहे हैं, लेकिन उपवास करने पर शरीर देह कुछ शिथिल पड़ जाएगा, वीक हो जाएंगे, इसलिए अपन पहले ही छलांग लगाकर पेड़ पर बैठ जाते हैं, क्योंकि कल के दिन उपवास के समय शक्ति नहीं मिली, छलांग लगा नहीं पाएंगे तो क्या होगा, इसलिए अभी छलांग लगाकर ऊपर बैठ जाते हैं। तो बोले ठीक है भाई, तो सब छलांग लगाकर ऊपर पेड़ पर बैठ गए। दूसरे ने कहा, देखो छलांग तो लगा दिए, लेकिन क्या भरोसा उपवास करने के बाद अगले दिन उपवास तोड़ने के लिए हमको फल तोड़ने की शक्ति होगी कि नहीं, है कि नहीं। उपवास को तोड़ना है तो फल से तो तोड़ेंगे ना, तो ऐसा करते हैं एक फल तोड़कर अपन अपने पास रख लेते हैं। तो बोला अच्छा आइडिया है, तो फल तोड़ के सब रख लिए। तीसरे ने कहा, अरे उपवास करने के बाद क्या भरोसा शक्ति रहे कि उस फल को अपने मुख तक लाने की शक्ति है, इतने वीक हो जाए कि ऐसे ही पड़े रहे। तो इससे अच्छा है कि पहले फल को ऐसे लेकर पोजीशन लेकर बैठ जाए। तो फल को ऐसा पोजीशन में लेकर बैठ गए। फिर चौथे ने कहा, क्या भरोसा इतना वीक हो जाए कि मुंह खुलेगा कि नहीं। हाँ, तो अभी से मुंह खोल कर रख लेते हैं और फल को पास पे पोजीशन में लाकर रख लेते हैं। बोला हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। तो पांचवे ने कहा, क्या भरोसा चबाने की कोई शक्ति रहे नहीं, ऐसा करके सब कुछ चबा के अभी रख लेते हैं। तो छठे ने कहा, इतना कुछ कर ले तो खा ही लेते हैं क्या है? तो क्या फर्क पड़ता है, खाने को छोड़कर बाकी सब तो कर ही लिया तो खा ही लो। अर्थात जिसका जितना सामर्थ्य है उतना करना चाहिए। आत्मवृत्ति अनुसारेण। तो ध्रुव महाराज ने इतनी तपस्या की और हमको अचानक एक दिन ध्रुव महाराज का मूड आ गया, तो फिर वो अधिक देर तक नहीं चलेगा, अधिक देर तक नहीं चलेगा। ध्रुव महाराज का जमाना दूसरा था, वन के भीतर गए हैं, आज की तारीख में तो कोई वन भी नहीं मिलते, और वन में जाओ भी तो वीरत्न जैसे लोग मिलते हैं, जो 10 साल से वन में घूम रहे हैं लेकिन तपस्या नहीं कर रहे हैं, पुलिस फोर्स का तपस्या करवा रहे हैं। अर्थात आज की तारीख में वन में नहीं जाना है, घर में ही रहना है और घर को वृंदावन बनाना है। इसलिए आप सभी से यही निवेदन है कि आप राधा और कृष्ण की सेवा पूजा कीजिए और मंत्र का जाप कीजिए, और जो कुछ भी घर में बने वो कृष्ण की इच्छा के अनुसार बने। कृष्ण को भोग लगाकर पूरे परिवार को आप प्रसाद वितरित करें। घर में जो कला होते हैं वो सब कम हो जाएंगे। जब नाम लेने की आदत पड़ेगी, जो भक्त लोग आपस में क्रोध करते भी हैं तो भगवान का नाम लेकर हरि बोल, तो अगर कोई एक दूसरे पर गुस्सा भी करेगा तो हरि बोल करेगा, तो भगवान का नाम लेगा, तो उससे धीरे धीरे अपना गुस्सा ही ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि महामंत्र के जप और भगवान के इस नाम के विषय में ज्ञान अधिक बढ़े। और यहां ध्रुव महाराज ऐसी भीषण तपस्याएं किए हैं कि अब उनके जीवन में महान परिवर्तन हो गया है। और जब उन्होंने अपना श्वास पूरी तरह बंद किया तो उसका प्रभाव तीनों लोगों को प्राप्त हुआ और ऊपर के लोगों के देवतागण ये अनुभव करने लगे कि उनका श्वास भी बंद हो रहा है। जो देवलोकों में वायु प्रवाहित हो रही थी वह थम गई और सारे देवतागण भ्रमित हो गए। अरे जो अबला अबोध बालक अपने पिता के गोद में बैठने का सामर्थ्य नहीं था अब इतना शक्तिशाली हो गया कि तीनों लोग उसकी भीषण तपस्याओं के परिणाम स्वरूप कांप रहे हैं। छह महीने में ध्रुव महाराज में ऐसा महान परिवर्तन क्या आ गया है? यह है कृष्णा का परिवर्तन, यह है कृष्णा का प्रभाव। जब कृष्णा आपके जीवन में प्रवेश करते हैं तो आपके जीवन को पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर देंगे, आपके हृदय में क्रांति मचा देंगे। कृष्ण को एक अवसर देकर तो देखिए। अरे नन्हा सा बालक जो रोता हुआ बिलखता हुआ निस्सहाय अवस्था में अपनी मां के पास गया था, ऐसा बालक आज बड़े बड़े देवताओं को कंपा रहा है। ऐसे नन्हे से बालक की तपस्याओं से वायु देव भी निस्सहाय अवस्था में है, कुछ नहीं कर पा रहे। ये ध्रुव की क्या स्वयं की निजी कोई शक्ति थी? नहीं, ये कृष्णा की शक्ति है। हमारी अपनी कोई शक्ति नहीं, सारी शक्ति कृष्ण की है। जो कृष्णा के साथ संपर्क स्थापित करे वो महाशक्तिशाली बन जाए। और वही संपर्क जो ध्रुव महाराज ने करोड़ों वर्ष पूर्व कृष्णा के साथ स्थापित किया, वही संपर्क स्थापित करने की सुवर्ण संधि आप सभी को आज श्री प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त है। और आप सभी को क्या करना है? केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, श्री प्रभुपाद के आदेशानुसार अपने जीवन को ढालना है। और देखिए किस प्रकार तीनों लोगों को कंपाने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है। अर्थात वे ब्रह्मांड में प्रभाव करने वाले थे ध्रुव महाराज। लोग कहते हैं मैं अकेला हूं, मैं अकेला भक्त क्या करूंगा, जगत तो इतना विशाल है, दुनिया तो इतनी बड़ी है, मैं अकेला हूं छोटा सा एक कण की तरह, भला मैं क्या कर पाऊंगा। ध्रुव महाराज एक अकेले थे, लेकिन जब एक अकेला व्यक्ति गुरु के आदेश अनुसार कृष्ण की प्राप्ति की अभिलाषा करता है तो कृष्ण उनके हो जाते हैं और वह अकेला नहीं रहता। और इसलिए ध्रुव महाराज अब कृष्ण के चित्त को प्रभावित कर चुके हैं और कृष्णा की शक्ति से ध्रुव महाराज की शक्ति का संचार तीनों लोकों में प्रवाहित हो रहा था। इस कथा पर ध्यान दें, जिस शक्ति का अर्जन ध्रुव महाराज ने अपने जीवन में छह महीने में किया उसी दिव्य आध्यात्मिक शक्ति को हम सभी आज प्राप्त कर सकते हैं। और इसके उत्कृष्ट उदाहरण है श्रील प्रभुपाद स्वयं। ध्रुव महाराज एक अकेले तीनों लोगों पर प्रभाव कर रहे थे और श्रील प्रभुपाद अकेले पृथ्वी भर पर उनका प्रभाव पड़ रहा था। अर्थात हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रचार करना है, ये विचार नहीं करना हम अकेले हैं या अकेले हैं। भगवान जब हमारे साथ हो तो सब कुछ संभव है। तो ध्रुव महाराज जब तपस्याओं में लीन हो गए, केवल एक अंगूठे पर वो खड़े थे तो पूरे उनके देह के भार से पृथ्वी कुछ नीचे दब गई, विश्व पर उनका प्रभाव पड़ा। उसी प्रकार कृष्ण कृष्ण की कृपा से हम कृष्ण की कथा का प्रचार करके विश्व पर प्रभाव कर सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक भारतवासी को यह विशेष आदेश दिया है, जन्म सार्थक करी कर उपकार। प्रभाव करना है हमको, आपको, सभी को मिलकर शिला प्रभुपाद के इस मिशन में हाथ बटाना है, योगदान देना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रभाव करने का प्रयास करना है। यही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। वर्णन आता है कि जिस प्रकार कबड्डी का खेल होता है, कबड्डी के खेल में एक व्यक्ति दूसरे टीम में जाता है, कबड्डी 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 बोलता हुआ, और जितने लोगों को वो छू सकता है छूकर स्पर्श करके वापस लौट के आता है। तो भगवान के नाम का प्रचारक भी ऐसे कबड्डी का खिलाड़ी जैसा होता है। जब हम प्रचार करने जाते हैं तो बस हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जितने लोगों को स्पर्श कर सके, प्रभावित कर सके अपने सामर्थ्य के अनुसार, स्पर्श करके फटाफट वापस लौट जाना है भक्तों के संग में। ज्यादा देर घूमते रहेंगे तो पकड़े जाएंगे, माया के तीन भी स्ट्रांग है, आसानी से हारती नहीं। तो हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु अपने स्कूल की बात बताते हैं कि उनके स्कूल में कबड्डी के टीम में एक बहुत बड़े पहलवान वेद भूषण करके थे। तो भूषण जी इतने शक्तिशाली हृष्ट पुष्ट शुरौर थे कि जब वो दूसरे टीम में प्रवेश करते तो ज्यादा फटाफट जोर से भाग लाग के आने का प्रयास नहीं करते थे, प्रेम से अंदर घुसते थे, कबड्डी 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 ऐसा बोलकर चलते हुए जाते थे। तो उसको आता हुआ देखकर सारे टीम के खिलाड़ी उसको पकड़ लेते, कोई हाथ पकड़ता, कोई पैर पकड़ता, कोई सर पकड़ता, और वो सबको पकड़ने देते, और जब देख लिया कि सबने पकड़ लिया तो फटाक से वापस मुड़ते,